दंडोत वंदन अनकुबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखोह प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो हो त्यों नानक दास बोले। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की अपार कृपा है कि उन्होंने अपने चरणों में लगाने के लिए हमें सुखमनी प्रदान किए। सुखमनी का भाव यह है परम सुख, सुखमनी का भाव है परमपिता परमात्मा आनंद। सुखमनि हमारे जीवन का लक्ष्य है और यदि लक्ष्य की प्राप्ति के बगैर ही शरीर छोड़ दिया तो उस व्यक्ति को आत्महत्यारा कहा गया है। जो व्यक्ति सुखमनि को प्राप्त किए बगैर मर जाता है वह आत्महत्यारा है, और जो व्यक्ति इस क्षणभंगुर शरीर से सुखमनि को प्राप्त कर लेता है वह सबसे बड़ा भाग्यशाली और वह प्रशंसा के योग्य है, पूजने योग्य। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी की महिमा कह रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? जो बहुत विद्वान हो, बहुत शास्त्रों को जानता हो वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी वो है जो ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास रहकर सेवा करके सिमरन करके और उनकी आज्ञा में रह करके उनकी खुशियों को प्राप्त किया है और उनके चरणों में रह करके वह भी परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जो उसके गुरु ने प्राप्त किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े इतिहास जानने वाले बड़े बड़े विद्वान पीछे रह जाते हैं और अनपढ़ ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। कबीर जी ब्रह्मज्ञानी थे और उन्होंने अपने बारे बताते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, हमने सारी जिंदगी कागज और कलम को छुआ नहीं। ब्रह्मज्ञान है आत्म दर्शन, ब्रह्म ज्ञान है अंतर यात्रा, और अंतर यात्रा अर्थात अपने अंदर स्वयं में खुदाई करना, ध्यान के माध्यम से, सुमरण के माध्यम से, साधना के माध्यम से। और साधना वही करा सकता है जिसने स्वयं गुरु के पास रह करके साधना किया हो, उसकी खुशियां प्राप्त किया हो, दूसरा नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी की बहुत महिमा है। सुखमणि साहिब में जितनी महिमा है ब्रह्म ज्ञानी की, इतनी महिमा किसी और ग्रंथों में हमने नहीं देखा है। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एकस बिन कोय। ब्रह्म ज्ञानी अंदर देखता है तो एक को देखता है। जब अंदर प्रवेश करता है वो अपनी वृत्तियों को अंदर ले जाता है तो अपनी वृत्तियों को एक में लय कर लेता है, एक प्रभु परमात्मा वाहेगुरु में। और जब आंख खोल करके बाहर देखता है तो वो अनेक में एक का दर्शन करता है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एकस बिन कोई। वो यही देखता है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यत, तस्याहम न प्रणश्यामी सचा मेना प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन के, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को सब में और सब में जो आत्मा है उसको अपने में देखता है वह मेरा स्वरूप है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए, हमारा इतना पवित्र जीवन हो जाए, हमारी रितंभरा बुद्धि हो जाए, हमें दिव्य दृष्टि मिल जाए गुरु की कृपा से, हमें तीसरी आंख मिल जाए। लेकिन यह तीसरी आंख उसी को मिलता है जो गुरु के वचनों को सुनता है, मनन करता है और अपने जीवन में घटाता है। एक चीज और आप लोगों से विनती है कि कल कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर पीछे बैठ के गप्पे करते हैं। जो व्यक्ति सत्संग में आ करके गप्पे करता है, दूसरे को डिस्टर्ब करता है, शास्त्रों में उसको ऐसा लिखा है कि वो सीधा नरक में जाता है बिना रुकावट के। इसलिए ऐसा ना हो कि सत्संग में आकर के भी नरक के अधिकारी हो जाएं। और नरक का आपको पता ही है क्या होता है, वहां पर 1000 बिच्छू एट ए टाइम डंस मारता है। इसलिए सत्संग में जब आओ तो चुप रहो, मौन रहो, किसी को डिस्टर्ब ना करो और ध्यानपूर्वक सत्संग को सुनो। दूसरा क्या है कि सत्संग में आने से, सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले आओ। सत्संग की भी कोई मर्यादा है, ऐसा नहीं कि जब जो है सो टाइम मिला आकर के चले आए। जो व्यक्ति सत्संग होने में सहयोगी होता है वो पुण्य का अधिकारी है, जो सत्संग को डिस्टर्ब करता है वो पाप का अधिकारी। ये सीधी सी बात है। अब ये आपको विचारना है कि पाप कमाना है या पुण्य कमाना है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम सब लोगों को उपदेश कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी की महिमा बता रहे हैं। उनका ब्रह्म ज्ञानी की महिमा बताने का उद्देश्य क्या है? कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज की महिमा को सुनता है ना, तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, वैसा बनने का मन करता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ब्रह्मज्ञानी की उस्तत, ब्रह्मज्ञानी की महिमा, ब्रह्मज्ञानी का जीवन के बारे में इसलिए बता रहे हैं ताकि हम लोग भी वैसा पवित्र जीवन जीकर स्वयं प्रकाशित हों और इस जगत में सबको प्रकाशित करें, खुशियां बांटें, आनंदित करें। आप जपह अवरह नाम जपह। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी की महिमा बता रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि ब्रह्म ज्ञानी का कीमत इस संसार के दौलत से आंक दें, तो ये असंभव है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान एक निर्मोलक हीरा है, निर्मोलक, उसका कोई मोल नहीं है। हाँ, यदि कोई ब्रह्म ज्ञान को खरीदना चाहता है तो उसका कीमत भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि इतना कीमत दोगे तो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। कहो तो आप सुना ही दूं। गुरु महाराज कहते हैं उसका कीमत है, कंचन स्यो पाइए नहीं तोल, मंदे राम लिया है। ब्रह्म ज्ञान पाने का एक ही कीमत है, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए, ऐसा है कीमत। और संसार के दौलतों से वो खरीदा नहीं जा सकता। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर जो भी शुभ गुण है वो सारे शुभ गुण ब्रह्म ज्ञानी के मन में होता है, सब कुछ होता है। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। यदि कोई व्यक्ति बाहर से देख करके ये चाहे कि ब्रह्म ज्ञानी के भेद को जान ले, तो ये असंभव है। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, बाहर से देख करके ब्रह्म ज्ञानी के भेद को कोई भी नहीं जान सकता। एक समय की बात है, वेद व्यास जी का पुत्र था सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि जन्म से ही वैरागी थे। जब वो जन्म लिए, जन्म से ही उन्होंने संसार को असार, नाशवान, ज्यों सुपना और पेखना, ऐसे जाना उन्होंने। क्योंकि वेद व्यास जी पाठ कर किया करते थे वेद का, और उनकी पत्नी सुना करती थी, जिसके प्रताप के कारण वो जन्म से ही उनको कुछ विवेक था। और ज्ञान हमेशा गुरु भाव से होता है। यों तो वेद व्यास जी ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन वेद व्यास जी को ये पता था कि सुखदेव को मेरे से ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि इसको हमारे अंदर पिता भाव है। पिता भाव में ज्ञान नहीं होता। जब भी किसी को ब्रह्म ज्ञान होता है तो उसको गुरु भाव हो, गुरु समझने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। सुखदेव जी को वेद व्यास जी ने राजा जनक जी के पास भेजे। पहले तो मन में शंका हुआ कि मैं वैरागी, मैं संसार को छोड़ देने वाला सन्यासी और एक गृहस्थ, वो भी राजा के पास जाऊं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन पहले के लोगों में ये था कि जो पिता ने आज्ञा दिया पिता ने जो हुक्म किया बच्चे आज्ञा का पालन करते थे। भगवान राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष, जबकि राजा जितने भी राज के अधिकारी थे पूरा अयोध्या राम के हक में थे कि राम को ही राजा बनाया जाए और किसी को राजा ना बनाया जाए, फिर भी सिर्फ पिता की आज्ञा को मानकर, मां की आज्ञा को मानकर, राजा दशरथ की आज्ञा को मानकर राम 14 वर्ष को वनवास जाते हैं। इसी तरह से सुखदेव जी पिताजी की आज्ञा मान करके राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। राजा जनक ब्रह्मज्ञानी हैं, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। राजा जनक ने अपने मंत्रियों को और दरबानों को हुक्म कर दिए कि कुछ दिनों के बाद सुखदेव ने आना है। जब सुखदेव आएगा तो उसको पहला ही गेट पर रोक लेना और उसके ऊपर जो है जितने भी अंदर जो संत लोग या सारे जो लोग भोजन करते हैं उसका जो पत्तल है, जूठा पत्तल, उसके सिर पर डाल देना और वाच करते रहना कि उसके मन पर क्या फर्क पड़ता है। उसके सिर पर जी जूठे पतले पा दिया और दरबान ने कह दिया यहीं टिके रहो 3 दिन। वो जी 3 दिन अडोल वहां खड़ा रहा। राजा जनक अंदर से पूछते हैं अपने कर्मचारियों से, सुखदेव का क्या हाल है? कहते हैं महाराज वो तो अडोल खड़ा है, ना पानी मांगता है ना कुछ मांगता है। जब उसको उसके सिर पर इतनी जूठी पतलें डाली गई उसने कोई अपमान महसूस नहीं किया। आज यदि कोई आवे ने ब्रह्म ज्ञान पूछने उसको कह दो भाई कल आ जाना, कहते वो जानते क्या होता है, बताना तभी बता दो, हमारे पास कल टाइम नहीं है। जैसे कोई बड़ा एहसान कर रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान कितनी ऊंची विद्या है, इसके लिए यदि प्राण भी देना पड़े तो बहुत सस्ता काम है, बहुत सस्ता काम। और जो व्यक्ति भजन में, सुमरण में, ध्यान में, सत्संग में आलस्य करता है वो समझो अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि मृत्यु क्या है, मौत क्या है? कहते हैं जिस वक्त परमात्मा का ध्यान करने का चित्त में आवे, या कोई संत महापुरुष तुमको ध्यान कराएं, साधना कराएं, नाम दान दें और जीवन में प्रभु के साथ जुड़ने की युक्तियां बताएं और तुमको आलस्य आवे कि बाद में कर ले, समझ जाओ यही मौत है और कोई मौत नहीं है। क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, कल कभी आता नहीं है, कल तो सिर्फ एक मौत ही मौत, कल नाम मौत का है। सुखदेव जी अडोल बैठे रहे, खड़े रहे। राजा जनक कहते हैं उसको अंदर ले आओ, और अंदर ले करके उसको रंग महल में ले जाओ जहां सुंदर स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, उसको अच्छे अच्छे पोशाक पहनाओ और अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाओ, तरह तरह का नृत्य हो, तरह तरह के जो सांसारिक जिस जो अट्रैक्शन जिन बातों से है संसार का वो सारा कुछ उसके अंदर। और रंग महल में 3 दिन रहा, कहते 3 दिन इसको रखो। बार बार राजा पूछता है क्या हाल है, उसका मन डोला कि नहीं? कहते महाराज जब उसको अपमान कर रहे थे जूठे पत्तल उसके ऊपर फेंक रहे थे, वो अपमान नहीं महसूस कर रहा था। यहाँ पर उसको तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, शान शौकत है, सब कुछ 36 प्रकार के भोजन हैं, लेकिन फिर भी इसको कोई आसक्ति नहीं है। राजा जनक कहते हैं वो अधिकारी है, उसको ले आओ मेरे पास। सुखदेव जी राजा जनक के चरणों में बैठा। राजा जनक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे, अपनी माया से उन्होंने राजमहल के चारों तरफ अग्नि लगवा दिए। किसी मंत्री ने आके कहा कि आपके राजमहल के चारों तरफ आग लग गया है। सुखदेव जी वहां बैठे थे, उनके पास एक कमंडल था जिससे वो पानी वगैरह पीते थे। साधुओं के पास और होता क्या है, पल्ले रिजक न बंदे पंछी ते दरवेश। और एक लंगोट था जो पहने हुए थे, और एक लंगोट उनके हाथ में था, और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, वो एकदम मस्त रहते थे। मंत्री ने आके कहा राजा को कि राजन, आपके महल में चारों तरफ अग्नि लग गई है। सुखदेव जी लंगोटी उठा करके दौड़ने लगे। राजा जनक कहते हैं सुखदेव जी बैठ जाओ, क्या बात है, आग लग गई है, लंगोटी जल जाएगी, शरीर जल जाएगा। वहां पर राजा जनक उपदेश करते हैं, ऐ सुखदेव, तुम्हारी आसक्ति लंगोटी में है, तुम्हारी आसक्ति शरीर में है, क्या तुम शरीर हो? हे सुखदेव, जो जल जाए, जो कट जाए, जो बाहर के वातावरण से जो नष्ट हो जाए, वो पंच भौतिक शरीर है, तुम तो शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप चेतन आत्मा हो। ऐसा उपदेश कर, उत्तम अधिकारी था, इतना ही उन्होंने उपदेश करना था। नानक नदरी नदर निहाल, राजा जनक ने उपदेश किए और उसके अंदर चानना हो गया। वहां पर राजा जनक कहते हैं देखो, यूं तो मैं राज कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कर रहा हूं कि या तो इसमें लाखों प्रॉफिट हो जाए या लाखों नुकसान हो जाए, ये तो गुरु का चीज है, क्योंकि हमने गुरु को तन मन धन सौंप दिया है। अभी हमारे कमरे में किसी ने आए कि स्वामी जी कौन तीन चीज है जो गुरु को सौंपना चाहिए, संत को सौंपना चाहिए। मैं कहा तन मन तो सौंपना ही है, और धन सौंपने से पहले उसमें श्रद्धा जोड़ देना। यदि धन सौंपा, तन सौंपा और अहंकार हुआ तो वो सौंपना नहीं है। तन मन धन तीन चीजें सौंपना तो लिखा है, एक श्रद्धा जो है, श्रद्धा उसके साथ जोड़ना देना, तीनों के साथ। श्रद्धा सहित धन सौंपना है, श्रद्धा सहित मन सौंपना है, श्रद्धा सहित तन सौंपना है, फिर जा करके तुम्हारा सौंपना सार्थक है। वरना सौंप करके भी अहंकार हुआ तो वो भी जो है दो पैसे का नहीं। राजा जनक सब कुछ होता हुआ भी, संसार का वैभव राजा होने के बावजूद भी उनको किसी भी चीजों से लगाव नहीं है, वो अपरस है। माया मोह जो है, माया मल अविद्या से रहित हैं, उनको किसी प्रकार का जो है सो लगाव नहीं है, वो निर्लेप है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, बाहर से देख करके जो कोई कहेगा ना कि हम इसका भेद जान ले, तो ये असंभव है। बहुत से लोग बाहरी देख करके, महापुरुषों के, संतों के बाहरी वातावरण को देख करके अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन वह अनुमान 100% गलत है। ब्रह्म ज्ञानी बाहर से तो वैसा ही दिखते हैं जैसे आप हो, लेकिन अंदर जो है वो टोटली चेंज होता है, क्योंकि उनके अंदर तीसरी आंख होती है, दिव्य दृष्टि होता है, उनकी समझ, उनकी सोच ब्रह्ममय होती है। ओ ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जाने। वो जिधर भी देखता है सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ऐसी जो पवित्र दृष्टि ब्रह्म ज्ञानी का है, उसके ऊपर श्रद्धा करने वाला भी उस ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी को कौन जाने भेद, अर्थात उसके भेद को कोई नहीं जान सकता। हाँ, एक जान सकता है, ब्रह्म ज्ञानी के भेद को एक व्यक्ति जान सकता है। वो कौन है? ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, बस। यदि कोई और दूसरा ब्रह्म ज्ञानी है वही ब्रह्म ज्ञानी के भेद को जान सकता है, वरना और कोई जगत में नहीं जान सकता है। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार है, वंदना है। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अध्याख्यर, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अधाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अधाख्यर, उसके बारे में आधा अक्षर भी कहा नहीं जा सकता कि वो कैसा है। एक अक्षर तो दूर की बात है, आधा अक्षर भी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, आधा अक्षर भी जो है कहना उसके बारे में इम्पॉसिबल है। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी जो है जितनी 33 करोड़ देवता हैं उससे भी ऊपर है, सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ऐसा अमृत इस संसार में यदि अमृत पाना ही है तो गुरुवाणी का ओट आसरा लो। गुरुवाणी को पढ़ना है, गुरुवाणी को सुनना है, गुरुवाणी को कान से पीना है और गुरुवाणी का मनन करना है। गुरुवाणी मय जीवन हो जाए, रोम रोम से गुरुवाणी का हमें, सिर्फ तोता रटन नहीं, तोता रटन तो उससे अच्छा टेप रिकॉर्डर बहुत अच्छा बोल लेता है, उसमें टेप कर दो ना, वो कोई गलती भी नहीं करता। बहुत से लोग तोता रटन होकर के अहंकार करते हैं कि हमें बहुत वाणी याद है, तो मैं तो उनको एक ही बात कहता हूं, तुमसे ज्यादा शुद्ध जो है टेप रिकॉर्डर पढ़ लेता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाता। एक समझ, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि गुरु महाराज का हुक्म है समझ पढ़ियो तो विसरियो गावन। यदि एक गुरु की समझ मिल जाए तो ये जो भागना दौड़ना इधर उधर सब समाप्त हो जाता है, गुरु की समझ। और गुरु की समझ होता है उसी को जो कोई ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष के चरणों में श्रद्धा भक्ति से गुरुवाणी को सुनता है, मनन करता है और अपने जीवन में घटाता है। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका अंदाजा लगा सकता है, उसके बारे में कुछ कह सकता है कि ब्रह्म ज्ञानी ऐसा होता है, ब्रह्म ज्ञानी ऐसा होता है। तुम तो एक दिन ब्रह्म ज्ञानी जो है ना सारी रात सोया रहे 10 बजे तक तो तुम्हारा 1 साल की श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, उससे तो ज्यादा मैं महान हूं है जी, कि मैंने तो सुन रखा है वो अमृत वेले उठते हैं, ये 10 बजे तक सोए हुए। 1 साल जो तुमने श्रद्धा रखा है ना 2 पैसे में, मैंने तो सुना है कि ब्रह्म ज्ञानी ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन यहां तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, इस संसार में कोई भी नहीं है जो उसके बारे में बता सकता है कि वो ऐसा है। ब्रह्म ज्ञानी का नियम से बाहर होता है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी का जो शरीर है वो सिर्फ लोक कल्याण के लिए टिका रहता है। थोड़ी सी वासना वो जान के रखे रहते हैं ब्रह्मज्ञानी, ताकि मैं संसार का उपदेश कर सकूं, नहीं तो थोड़ी भी वासना न रखें परोपकार करने का तो शरीर उसी वेले समाप्त हो जाता है। एक समय की बात है, एक संत हुए हैं ब्रह्मज्ञानी स्वामी राम कृष्ण परमहंस, वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वो सत्संग किया करते थे, तो सत्संग जैसे चल रहा है, सत्संग करते करते बीच में जनता को बोलते थे कि 10 मिनट के लिए ठहरो, मैं अंदर से आ रहा हूं। और उनकी पत्नी थी शारदा, वो भी ब्रह्मज्ञानी थी, साक्षात ब्रह्मज्ञानी वो भी थी। सत्संग सुनाते सुनाते लोग पब्लिक बैठे होते थे और बीच से उठ कर के जो है अंदर चले जाते थे रसोई में, शारदा मुझे कुछ खाने के लिए दो। कहते थे आपको इतना भी नहीं ज्ञान है, पब्लिक बैठे सत्संग सुन रहे, आप बीच में उठ करके आ गए हो कि मुझे कुछ खिलाओ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि शारदा एक ही चीज है जो इस शरीर को टिकाया हुआ है, एक ही वास। आज तुमको राज की बात बता ही देता हूं कि शारदा जिस दिन मेरी रुचि भोजन से हट जाए तो तुम जान लेना कि यह शरीर 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। एक समय की बात है, शारदा भोजन लेकर के आती है थाल में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को खिलाने के लिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देखकर मुंह फेर लेते हैं और दूसरे तरफ मुंह करके लेट जाते हैं। उस वक्त शारदा को वो बात याद आ गया और उनकी जो थाली थी भोजन का वो जमीन पर गिर पड़ा। और वही हुआ, 3 दिन के बाद उनका शरीर शांत हो गया। ब्रह्मज्ञानी लोक कल्याण के लिए थोड़ी सी वासना रखते हैं ताकि शरीर टिका रहे और इस शरीर से लोगों का उपकार करें। इसलिए ब्रह्मज्ञानी की महिमा को इस संसार में, अब हमारे जैसा कोई तुच्छ बुद्धि वाला कहता देखो इतना भी अकल नहीं इनको, सत्संग करते करते पब्लिक को कहते हैं 2 मिनट ठहर जाओ और अंदर जाके रोटी, कहते हैं शारदा को कुछ खिलाओ। हम लोग अपनी तुच्छ बुद्धि से संतों को आंकते हैं और जो व्यक्ति संतों को अपने बुद्धि के अनुसार आंकता है वो मूर्ख है। संतों की, महापुरुषों की, साधुओं की, ब्रह्मज्ञानी की महिमा को इस संसार में कोई भी नहीं जान सकता। ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। संसार वालों की तो श्रद्धा ऐसी है जैसे पारा होता है ना, पारा जमीन पर गिर जाए तो वो हजारों छोटे छोटे बन जाते हैं, ऐसे जो है ना हजारों टुकड़े हो जाते हैं उसके। इसी तरह से श्रद्धा 10 साल से है, एक चीज दिख जाए तुम्हारी बुद्धि के प्रतिकूल, बस तुम्हारी श्रद्धा वैसे चकनाचूर हो जाता है। श्रद्धा तो वो है जो प्रतिकूल देखने पर भी शंका ना हो। गुर कहे सो कार कमावो, गुरु की करनी का है धाव। जो गुरु कहता है वो हमारे लिए, उस पर चलना हमारा अधिकार है, जो गुरु करता है उसको हमें नहीं देखना है। संत जो करते हैं उसे हमें नहीं देखना है। ब्रह्मज्ञानी, साधु, संत हमें रीस नहीं करना है। ब्रह्मज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। आपको मैं सत्य बोलता हूं, मैं अपनी बड़ाई के लिहाज से नहीं, एक संत महापुरुष थे, उनका मैं प्रवचन सुनने के लिए जाता था। लगभग 5,000 लोग उनको सुनने के लिए जाते थे, और वो नियम था उनका कि जो सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले मेन गेट बंद हो जाता था। समझ गए? सत्संग जैसे 8 बजे सुनना है, शुरू होना है, तो 7:55 में दरवाजा मेन गेट बंद हो जाता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और कभी कभी स्वयं लोग दौड़ते हुए जाते थे, हांफते हुए, जब लेट थोड़ा सा हो जाता था ना, ऐसे हांफते थे लोग, दौड़ते जाते थे। और कितने बार ये दास भी दौड़ता हुआ जाना, क्योंकि गेट बंद हो जाना और सत्संग चुक जाना। और जिन महापुरुषों से 5 दिन भी सत्संग सुना है ना, वो रास्ते में मिल जाएं, उनका पांव अभी भी छूता हूं, मुझे ये नहीं, क्योंकि उनसे हमें वो मिला है। थोड़ा 5 दिन भी सत्संग सुना है हमने, तो उनका हम देन सांसारिक वस्तुओं से दे नहीं सकते। लोग सालों सुन करके, सारा सत्संग सुन करके, थोड़ी सी कोई बात हो, हमारी श्रद्धा 2 कौड़ी में खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं, सत्य वेद गुरु वाक्य है, गुरु का जो वचन है, गुरुवाणी, और गुरुवाणी का जो सुनाने वाला है, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि गुरु महाराज ने हुक्म किए हैं, तन मन धन शीश भेंट देऊं, जो हर की बात सुनावे, जो हरि की चर्चा सुनावे, हरि का उपदेश दे, हरि की महिमा को सुनावे, उसको सब कुछ दे करके भी नम्रता धारण। गुरु महाराज कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, कोई अंत नहीं, कोई पारावार नहीं। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी को जो है ऑलवेज, एवरी टाइम, एवरीवेयर हम नमस्कार करते हैं। इसलिए आप लोगों से भी विनती है कि एक तो सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले आए, और सत्संग में ऐसे सुने जैसे कोई एकदम मूर्ति साधक हो, एक एक शब्द आप जो है अंदर जाए, कौन ऐसी बात है जो आपके दिल को लग जाए और आपका जीवन बदल जाए, समझे? क्योंकि गुरु महाराज यहां साक्षात हाजर नाजर हैं और वही बोल रहे हैं, दास क्या बोल सकता है, इसमें क्या कीमत है? क्यों? क्योंकि क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे बखियाना, जब अपनी जोत खींचे है तू स्वामी, तो कोई करो दिखा बखियाना। जो श्वास बाहर गई है वो अंदर ना आवे, तो फिर बखियान करके दिखा दे राम सिंह, दिखा नहीं सकता। इसलिए जो शक्ति है, सत्ता है, वो तो वाहेगुरु की है, अर्थात वही आपको सुना रहे हैं। ये तो शरीर निमित्त है। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी जो महापुरुष होते हैं, वो चाहें तो एक नई सृष्टि बना सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी सदा जीता है। उसका यहां पर क्या भाव है? ब्रह्मज्ञानी नहीं मरता है, ब्रह्मज्ञानी जीते जी जान लेता है कि जो मरता है वो मैं नहीं हूं, इसलिए वो सदैव जीता है। जो ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे, सदा जीता है, नहीं मरता, वो मरता नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी को ये बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि जो मरणशील है वो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सारे जो पार्ट है ये मरने वाला है, और मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं तो सत चित आनंद व्यापक आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी को बोध होता है, जिसके कारण सद जीव नहीं मरता। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, और परमेश्वर की कभी मौत होती है कभी नहीं होती। जो मरता है वो संसार है, जो सदैव रहता है वो परमात्मा है। ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी के का जो सेवा करता है उसको ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति देते हैं। मुक्ति का भाव यह है उसको सुखमणि प्रदान करते हैं, उसके सारे दुखों को छीन लेते हैं और सारे आनंद उसको देते हैं। ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत उसको टेक्निक बताते हैं, उसको साधना बताते हैं, प्रभु से जुड़ने के लिए उसको साधनाएं बताते हैं। यदि कोई ब्रह्म ज्ञानी आपको कोई साधना बताए, कोई युक्ति बताए, नाम सुमरण का, मन बस करने का, उसकी एक ही युक्ति है कि अधिक से अधिक एकांत रहो। जो साधक पुरुष है उसको दो तीन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक है सम्यक आहार। सम्यक आहार का भाव यह है कि उतना ही भोजन लेना है जिससे शरीर का पोषण हो, शरीर बोझिल ना हो, भारी ना हो, जितना लेने से शरीर को ऊर्जा मिले और भजन में सुमरण में सहायक हो। सम्यक आहार और सम्यक निद्रा, और उतना जरूर सोना है जैसे हर एक के शरीर के अनुसार नींद अलग होती है। इस पागलपन में भी नहीं रहना है कि ये हमने सारी रात जगना है। सारी रात जगोगे ना तो तुम्हारा भजन नहीं होगा, वो पाठ करोगे लेकिन बार बार ऐसे ऐसे करोगे, उस पाठ का कोई फायदा नहीं है। शरीर के अनुसार 5-6 घंटे सोना है, और नहीं तो दिन में सो लो। सारी रात जगने का शौक है भजन करने का, तो दिन में सो लो 4-5 घंटे, सारी रात अखंड सुमरण करो। सम्यक आहार शरीर के लिए और सम्यक निद्रा, सम्यक नींद लेना है। सम्यक वाणी, उतना ही बोलना है जिससे कि व्यवहार चल जाए। फिजूल जो है, दो आदमी जब इकट्ठा होते हैं तो करते क्या है, अपना कूड़ा दूसरे को सूटते हो, दूसरे का कूड़ा अपने सिर पर पाते, और होता क्या है। इसलिए सम्यक वाणी, उतना ही बोलना है जिससे कि व्यवहार चल जाए। और यदि बोलना ही है तो संत मिले किछ कहिए, किछ सुनिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। गुरबानी बोलने के लिए भी ढंग बताया है, संत मिले किछ कहिए, कुछ अपना अनुभव बताओ और कुछ उसके अनुभव को सुनो। मिले असंत, ऐसे लोग मिले जिसकी वाणी सुनने से तकलीफ हो, निंदा चुगली ऐसी बातें हो, मस्ट कर रहे, चुप रहो। सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, सम्यक वाणी और सम्यक श्रवण, वही सुनना है जिसके सुनने से तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार हो, तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में जुड़े, वही सुनना है और नहीं सुनना है। और सम्यक ध्यान, जब अधिक से अधिक प्रभु के चरणों में ध्यान करो, वाहिगुरु के चरणों में अपनी वृत्ति को जोड़ो। ये 4-5 चीजें अपने जीवन में घटाओ, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, सम्यक दृष्टि, वही देखना है जिसके देखने से व्यवहार चल जाए। परत्रे रूप न पेखे नेत्र, हमें फिजूल विषयों को नहीं ज्यादा देखना है, क्योंकि आंख से और कान से विषय प्रवेश करते हैं, और जब विषय अंदर प्रवेश करता है तो मन को चंचल करता है, और जब मन चंचल होता है तो बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, और जब बुद्धि के अंदर सही निर्णय लेने की शक्ति नहीं होता तो बुद्धि नीचे को जाती है, और जब बुद्धि नीचे को जाता है तो मनुष्य का नाश हो जाता है। एक चीज दूसरे से जुड़ा हुआ है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी की महिमा को, कि ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्मज्ञानी जो है वो पूर्ण होता है, पूर्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो इतने पूर्ण हो जाते हैं कि वो जितना मर्जी बांटें तो भी वो पूर्ण रहते हैं, कोई घटता नहीं है, क्योंकि वो दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। वो जो वाहेगुरु के साथ वो अभेद हो जाते हैं ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, जिसका बांह कोई नहीं पकड़ता दुनिया में, ब्रह्मज्ञानी उसका हाथ पकड़ते हैं। आपको कुछ दिन पहले सुनाया था ना, भगवान बुद्ध का एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है और एक वेश्या देखकर उसको निमंत्रण करती है कि आप आइए और भोजन लीजिए, हमारे पास आपको इनवाइट करती हूँ। वो भिक्षु कहता है कि मैं तुम्हारा निमंत्रण जो है इन्विटेशन मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं समय पर आऊँगा। वह वेश्या बहुत खूबसूरत थी, सारी दुनिया लोग उसको धन दौलत बड़ी बिल्डिंगें दे दिया था, लेकिन दुनिया जो है स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। अचानक समय पा करके उसके शरीर में कोढ़ हो गया, तो वही लोग जो भौरे की तरह मड़राते थे उसके पास आया करते थे, उन्हीं लोगों ने उसके धन के लालच में आकर के उसको कूड़े में डाल दिया और उसकी संपत्ति को बेच करके जो अमीर लोग हैं, ये जो लोग हैं लालच के वश में आके क्या पाप नहीं करते, इसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि जब मनुष्य गिरता है ना, तो पशु से कीड़े से मकोड़े से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है, यहां तक कि शेर भी। शेर को बहुत खूंखार जानवर कहते हो ना, लेकिन इससे हजारों गुना खूंखार ये दो पांव वाला आदमी होता है। शेर का जब पेट भरा होता है ना, तो सामने पशु हो वो खाता नहीं है, उस पर हमला नहीं करता, ये शेर के अंदर जो खूबी है। यहां तक कि शेर जो है जब मांस खा करके लेटा रहता है तो एक पंछी है उसके दांतों में मांस लगा होता है, उसको आकर के वो खाता है और शेर उसको कुछ नहीं कहता। लेकिन ये दो पांव वाला पशु इतना खूंखार है कि ये चाहता है जगत का सारा धन जो है सो उसके लिए मारना पड़े, बेमानी करना पड़े, जो भी कुकर्म करना पड़े वो कर बैठता है। इसलिए इस पशु से ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, दो पांव वाले से, चार पांव वाले से कभी कभी उतना डरने की जरूरत नहीं। दो पांव वाला जो पशु है उससे बहुत सावधान। उसको फेंक दिया जी कूड़े में, बेचारी कराह रही है, सारा शरीर से पाक निकल रहा है, कोढ़ है। वो संत आया, महात्मा बुद्ध का वह भिक्षु ब्रह्मज्ञानी है, वो आया, आपने हमें निमंत्रण दिए थे, मैं आया हूं, और मलहम लेकर पट्टी लेकर के कुछ दूध लेकर कुछ खाने की वस्तु लेकर मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं। वो वेश्या कहती है नहीं नहीं तुम परे हट जाओ, मैं पापन हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। वो संत कहता है मैं ये नहीं देखता हूं कि तुम क्या हो, तुमने निमंत्रण दिया है उसको मैं स्वीकार किया था और मैं आया हूं, और हमारा आने का यही टाइम था, वो टाइम मेरा नहीं था। वहां पर जी संत उसको मलहम लगाते हैं और उसको दूध पिलाते हैं, संतों की दृष्टि में अमृत बरसता है। उसको दूध पिलाया संत ने, उसकी काया जो है सोने जैसी पहले से भी अच्छी हो गई, और वह वेश्या जब उठ के खड़ी एकदम सुंदर बन गई। फिर वो संत जाने लगा, वो वेश्या चरणों में गिर पड़ी, कहती है आपने हमें प्राण दिया है तो इस प्राण को सार्थक करने का आप ही युक्ति दो, आप हमें सन्यासी बना लो। और उस संत ने उसको सन्यास दिया और ब्रह्म ज्ञान दिया और वो एकांत में रह के साधना करने लगी, वो इनलाइटेंड ब्रह्म ज्ञानी बन गई। इसलिए संतों की महिमा को क्या बखान कर सकते, इम्पॉसिबल। गुरु महाराज यहाँ उपदेश कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, जिसका कोई नहीं होता उसका, उसको हाथ जो है ब्रह्म ज्ञानी पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ाना ही ना चाहे, कोई हाथी झिटक दे तो क्या करे ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी सबके ऊपर जो है अपनी दया रखता है, हाथ रखता है। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। देखो इतनी महिमा, ब्रह्म ज्ञानी के बारे में कहते हैं कोई निरंकार नहीं, ब्रह्म ज्ञानी और निरंकार में कोई भेद नहीं, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, आकार कहते हैं ये जो सारा संसार है ये आकार के अंदर है, अर्थात यह जो सारी सृष्टि है ये ब्रह्म ज्ञानी से बना है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म एक है। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार अर्थात ये सारा जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्म ज्ञानी का है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, साक्षात वो परमात्मा होता है। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, ब्रह्म ज्ञानी की जो शोभा है महिमा है उसको कोई व्यक्ति बखान नहीं कर सकता। और जब भी कोई संत महापुरुष के पास जाओ तो अहंकार से ना जाओ, वहां पर भगवान कृष्ण को जब दुर्योधन बुलाया, 36 प्रकार का भोजन तैयार करके रखा है, लेकिन उसको अहंकार था, अहंकार के मैं राजा हूं, वो अहंकार बस जो है वो अपने जाके तखत में अंदर बैठ गया कि जब मैं बाहर लेने के लिए आएंगे हमको नमस्कार करना पड़ेगा, जितने हमारे प्रजा हैं वो कहेंगे कि राजा हो के एक ग्वाले को नमस्कार कर। इसलिए ना जब आने घड़ी देख लिया कि आने वाले हैं भगवान कृष्ण, वो जाकर के राज सिंहासन पर बैठ गया। भगवान जो है उधर नहीं गए, ऐसो भाव बिदर को देखियो ओह गरीब मोह भाव है। खीर समान साग में पाया गुण गावत रैन बिहानी। भगवान संत महापुरुष भाव के भूखे, भाव के भावना विहीन नर पावे कैसे जगदीश को। आज एक गुरसिख कहते हैं कि स्वामी जी हमारे घर में तो कोई नहीं है लेकिन मैं आपको रोटी बना के खिलाऊंगी, और तो कुछ नहीं खिलाऊंगी, क्या खाना है, मैं क्या सूखी रोटी तेरी खाऊंगा, और कुछ नहीं बनाना सिर्फ रोटी बना लेना। कहते नहीं नहीं और कुछ तो बनाना है, पिज्जा खिलाना आपको, मैं क्या नहीं, बहुत ज्यादा बनाना तो एक दाल बनाना, ज्यादा बनाओगे मैं आऊंगा नहीं। और वही हुआ, और उसका भाव देख करके मैं इतना प्रसन्न हुआ, सिर्फ एक रोटी एक दाल खाया और मुझे बहुत आनंद आया। अहंकार संतों के पास नहीं शोभा देता, वहां तो भाव का काम है। ऐसो भाव बिदर को देखियो ओह गरीब मोह भावे, खीर समान साग में पाया गुनगावत रैन बिहाने। भगवान रीझ गए और भगवान कहने लगे वहां पर, जब उनको विदुर की पत्नी जो केला का गुद्दा है वो बाहर फेंकी जाती है और छिलका खिला रहे भगवान को, वो विदुर आते कहते तुम्हें कोई अकल नहीं है जो सो भगवान को छिलका खिला रहे हो, गुद्दा बाहर फेंक रहे हो। भगवान कहते हैं जो आनंद इस छिलके में है इस गुद्दे में नहीं है, ऐसा भोजन आज तक हमने कभी नहीं किया है। इतना स्वादिष्ट। विदुर कहते हैं कि तुम जो ऐसा करो, मैं साग बना के खिलाना है भगवान को। और विदुर भी मस्त प्रेम में, विदुर क्या करते हैं, साग को बाहर फेंकी जा रहे हैं और डंठल को जो है सब। प्रेम में कोई नियम नहीं होता है, प्रेम में तो जो है प्रेमी को देख के पागल हो जाता है। और प्रेमी वो है जो तुम्हारे चने को अमृत समझ के खाता है। सुदामा का चना चावल जो है, थोड़ा सा चावल, तीनों लोगों का सुख माने भगवान कृष्ण ने। ये सब प्रसंग कभी कभी इसलिए नहीं सुनाता हूं कि आदमी एकदम आंदोलित हो जाता है। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी की जो महिमा है वो अपार है। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी। ब्रह्मज्ञानी की जो शोभा है, महिमा है, उसको कोई बखान नहीं कर सकता। ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी, ब्रह्मज्ञानी जो है इस सृष्टि में सबसे अमीर होता है, क्योंकि सारा संसार उसके लिए तुच्छ होता है, कुछ भी नहीं होता। वो तो आत्म रस जे जानही सोहै खालस देव, प्रभ मह मोह मह तास मह रंचक नाहिं। आगे साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज से किसी सिख ने पूछा कि महाराज, ऐसा व्यक्ति जो मायामल अविद्या जिसको स्पर्श ना करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति का आप लक्षण बताएं। अपरस, ऐसा व्यक्ति जिसको संसार की जो माया है, मल पाप अविद्या, संसार का कोई भी चीज उसको स्पर्श ना करता हो, सब के बीच में रहता हुआ भी अलग सा रहता हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है? गुरु महाराज कहते हैं होता है। उसका लक्षण बता रहे हैं। श्लोक, उर्धारे जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान। अंदर जो है वो श्वास श्वास जो प्रभु का सुमरण करता है। श्वास अंदर जाए तो वाहे, श्वास बाहर जाए गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ऐसा जो व्यक्ति अभ्यास करता है और अभ्यास करते करते उसके अंदर जो अनहद नाद अर्थात जो चौथी अवस्था है, परा परा अवस्था, जो परा जाप है, जिसमें सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। जो अपरस व्यक्ति है जब अंदर झांकता है तो देखता है कि कोई जाप कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया हुआ है। बहुत अभ्यास करने के बाद जब तुम अपनी वृत्ति को अंदर ले जाओगे तो एक अनहद नाद बजता है, वो आप जो है सो जाप होता रहता है, जिसको अजपा जाप कहते हैं। ये बहुत साधना के बाद होता है, अनहद नाद अजपा जाप, जिसके बारे में मलुकदास जी कहते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आपको तो कभी सुमरण करते देखा नहीं, फिर भी आप आनंदित मस्त रहते हैं। मलुक जी कहते हैं, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। मैं तो अब प्रभु की गोद में बैठ गया हूं, अब वही सुमरण करे हमको नहीं। मलुकदास जी ब्रह्म ज्ञानी थे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जो अपरस है। अपरस का भाव यह है, रहता तो जगत में है लेकिन जगत का कोई भी मल विक्षेप आवरण, संसार का कोई भी चीज उसको स्पर्श नहीं करता। उसका लक्षण बता रहे हैं। श्लोक, उर्धारे जो अंतरनाम, उर नाम हृदय का है, जो हृदय में प्रभु के नाम को धारण किया है, और किसी को धारण नहीं किया हृदय में। जो तुमने दिल में 20 चीजें धारण किए हो ना, उसका कोई कौड़ी कीमत नहीं है, वो कब धोखा दे देगा उसका कोई पता नहीं। यहां तो मैं देखा हूं 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल, चार चार बच्चे होने पर भी डाइवोर्स, क्या भरोसा है। क्या किस पर भरोसा करते? पति पर करते, पत्नी पर करते, बच्चे पर, किस पर भरोसा? इस संसार में भरोसा करने लायक कुछ भी नहीं है। यदि भरोसा ही करना है तो उर्धारे हर का नाम, हृदय में एक हरि को और हरि के नाम को धारण कर लो। उर्धारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखा है भगवान, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में प्रभु का दर्शन करता है। सर्व में पेखा है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, और एक एक क्षण प्रभु की वंदना करता है, नमस्कार करता है। नानक ओह अपरस सगल निस्तारे, ऐसा जो अपरस पुरुष है, सपरस से रहित, ऐसा जो अपरस पुरुष है वो जगत को तार देता है, एक ही काफी है जगत में। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल को तारे, ऐसा जो पुरुष है वो इस संसार में लोगों को तार देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जो पुरुष है वह व्यक्ति के अंदर से यही भावना होती है कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो सबको मिल जाए। हर गुल में, हर शाख में, हर पत्ता में, हर गुल में, गुल नाम फूल का है, हर गुल में, हर शाख में, हर पत्ता में जा बजा उसका निशा था, मुझे मालूम ना था। सबके अंदर उसका ही नूर था, हर एक पत्ते में, हर एक टहनी में, हर एक फल में, एवरीवेयर उसकी ही ज्योत थी, उसकी ही नूर थी, लेकिन मुझको पता नहीं था। और संत महापुरुष हमें पता करा दिए हैं, इसलिए हमें उसकी वंदना करना है। और ब्रह्म ज्ञानी की महिमा से, उनके ज्ञान से, उनकी भक्ति से, उनके मार्ग बताने से आप लोगों का लोक सुखी, परलोक सुहेले।